संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। ये जो अनेकांग संबंधी 14 छंद थे, इनमें आज के दो छंद हैं, ये सबसे अंत के हैं, 13वें और 14वें भंग। आवाज नहीं पहुंच रही क्या ढंग से? ये नहीं है, ये है। ये क्या, ये कैसा है? ये क्या है, ये क्या है? चले तो दो ही रहते थे, अब चार कर दिए तो भी काम नहीं कर रहा। ये अंत के नित्य और अनित्य संबंधी दो बोल हैं। कोई नित्य मानते हैं और कोई आत्मा को अनित्य ही मानते हैं, उनकी ये चर्चा की है। बहुत ही मार्मिक शब्दों में है और इनका ये हिंदी पंडानुवाद है, ये भी उतना ही मार्मिक बन पड़ा है। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीन चीजें हैं। तो परिणमन तो उत्पाद व्यय रूप होता है और वस्तु द्रव्य रूप है। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य, द्रव्य में भी परिणाम माने बह रहे हैं उनको देखकर, ये मालूम अपने ये प्रवाह है। दो तरह का बोला ना, एक विस्तार क्रम और एक प्रवाह क्रम। तो प्रवाह माने होता है बहना, क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम, और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। आत्मा, आत्मा जो वस्तु है उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई यदि देखी जाए तो वस्तु तो मूल में है ही ठोस, फिर उसकी चौड़ाई क्षेत्र की अपेक्षा नापी जाती है। तो असंख्य प्रदेश ही उसका ये क्षेत्र है, तो असंख्य प्रदेश प्रमाण ये इसकी चौड़ाई है। और लंबाई काल के हिसाब से मानी जाती है कि अनादि अनंत इतना ये आत्मा लंबा है, और मोटा कितना है तो अनंत गुणों का अखंड पिंड इतना मोटा है, ऐसा ही भगवान आत्मा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। क्रमबद्ध पर्याय नामक किताब में विस्तार क्रम का उदाहरण देकर प्रवाह क्रम को समझाया है कि वो कहते हैं जिस तरह से आकाश के एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश है ना, इसमें एक एक कालानु छाया लोक आकाश में, तो वो जो प्रदेश जहां है अनादि काल से लेकर अनंत काल तक वो वहीं रहेगा कि उसको कहीं बदला जा सकता है? उसको बदला नहीं जा सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो और उनमें एक ऐसा विस्तार है, ऐसा विस्तार है, और उनमें क्रम है कि किसके बाद कौन। भाग्य की बात क्या है कि उनके नाम नहीं है, जैसे गुणों के नाम है ना, ज्ञान दर्शन चाहे तो सुख वीर, ऐसे प्रदेशों के नाम नहीं है। इसलिए वो विस्तार क्रम को हम समझाने के लिए नहीं कह सकते कि किसके बाद कौन, लेकिन उनमें भी व्यक्तिपना तो है ही ना, इकाईपना तो है ही ना। तो किसके बाद कौन है, अनंत काल तक वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ही अनादि काल से लेके अनंत काल तक जितने काल के समय हैं, जैसे आकाश के तो प्रदेश थे, तो एक एक काल का एक एक समय में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। काल द्रव्य की तो है ही, लेकिन जीव द्रव्य की भी ज्ञान गुण की कितनी पर्याय है कि जितने तीन काल के समय हैं, तो उनमें ज्ञान की वो पर्याय एक एक समय में खचित है, तो वो उसका भी अनादि अनंत प्रवाह है, उसको भी बदला नहीं जा सकता, नहीं तो उसके टूट के दो हिस्से हो जाएंगे। अब उस प्रवाह में आकाश के लोकाकाश के किस प्रदेश में कौन पुद्गल और कौन जीव कब रहेगा, ये नक्की है अनादिकाल से अनंत काल तक कब कहां कौन रहेगा। ऐसे ही काल के भी हर पर्याय में, जैसे ज्ञान की पर्याय है तो उसका ज्ञेय कौन बनेगा वो नक्की है, और जब ये नक्की हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय कब प्रगट कैसे क्या होगी वो सब नक्की है, इसमें से क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत निकलता है। तो अब कहते हैं वस्तु जो है, यहां जो चर्चा है वो प्रमाण की वस्तु की चर्चा है, सारे 14 छंदों में साधवाद की जो सिद्धि की है वो प्रमाण की जो आत्म वस्तु है उसके आधार पर सिद्ध की है। वो जो दृष्टि का विषय रूप जो भगवान आत्मा है वो तो सम्यक एकांत का विषय है, वो अनेकांत नहीं है, लेकिन सम्यक एकांत का विषय है। वो अनेकांत में तो द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलकर आत्मा है, तो वो द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अब क्या कहते हैं कि ये अनित्यता ऊपर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है और अंदर की जो वो नित्यता है वो एक सी हमेशा नहीं एक सी रहती है, इसलिए वो उसका हमें अंतर मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कि ये आम है, हरे से एकदम पीला हो गया, तो हरे से पीला होते दिखता है ना आपको, लेकिन वो आमपना कायम रहा ये दिखता नहीं है। तो क्या लिखा देखो, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पड़ संग, कि आत्मा तो क्षण भंगुर है, बस बुद्ध भगवान को यही तो हो गया, सर्वम क्षणकम सब क्षण, क्षण भंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञजन, अज्ञानी जन उस क्षण भंग के साथ में पड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत है नित्य वो उसको भूल गए। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लखे क्षण भंग के पर संग निज का नाश करते अज्ञजन, इस क्षण भंग के पड़ संग, ये संस्कृत में भी ऐसा ही ऐसा है, इसमें देखो छंद में देखो क्षण भंग संग पतिता दूसरी पंक्ति है ना, उसमें निर्ज्ञानात्म भंग संग पतिता प्रायः पशुर नश्यति, क्षण भंग के संग में पढ़कर माने उसके में क्षण भंगुरता भी थी और नित्यता भी थी, लेकिन इसे क्षणभंगुरता दिखाई दी तो इसने क्षणभंगुरता की संगति कर ली कि यही मैं हूं, बस खत्म। क्षणभंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन, क्यों कि वो जो परसंग वो पर्याय बना है, वो निज रूप जो वस्तु है त्रिकाली ध्रुव, तो उसका निज का नाश करते माने निज को नहीं जाना, निज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसी का नाम है नाश करना, और उन्हें अज्ञानी कहते हैं। चैतन्य निजमय आत्मा, चैतन्यमय निज आत्मा क्षणभंग है पर नित्य भी, क्षणभंगुर भी है और नित्य भी है। यह जान कर जीवित रहें नित्य स्यादवादी विज्ञजन, स्यादवादी विज्ञजन यह जानकर जीवित रहें माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करना इसी का नाम मरना है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना इसी का नाम जीवित रहना है। बस करम है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करना इसी का नाम पशुपना है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना इसका नाम विज्ञपना है। तो पशु लिखा ना, तो पशुओं को भी तो सम्यक दर्शन होता है, तो वे क्या है? कभी विज्ञजन है या पशु है? पशु तो ये कॉमन लोक में अज्ञानियों के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए उस अर्थ में उन्होंने कहा है। दर्शन देखो है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से। अब कुछ लोग कैसे हैं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आशा से, जो बोध माने ज्ञान टंकोत कीर्ण है, टाकी के उकीरा जैसा है ना, विशुद्ध है उसकी आस से। बस मैं तो वो ही हूं, अब मैं और कुछ नहीं हूं। वो अनित्यता का अपमान करते हैं। दूसरे प्रकार के एकांतवादी कैसे हैं कि वो जो है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से, पर मैं तो वो ही हूं, उसी में आप उसी की आशा लगाकर चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इंकार कर। चैतन्य की परिणति जो निरंतर उछल रही है, माने पर्याय निरंतर प्रकट हो रही है, उससे इंकार कर देते कि नहीं ये नहीं, ये मैं नहीं, क्षण भंगुर है, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। अपने आप ही दृष्टि की विषय की जब बात आती है ना, तो इसी तरह से इंकार करते हैं ना। लेकिन उनके दिमाग में, स्यादवादी विज्ञजनों के दिमाग में तो वो अपर पक्ष स्वीकृत है, उससे वो इंकार नहीं करते हैं। नए चक्र जो पढ़ते हैं तुम विद्यार्थियों में, उनने पहले दिन की परिभाषा में प्रमेय मातंत्र की परिभाषा दी है, उसमें लिखा अनिराकृत प्रतिपक्षा, जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करे वो नए है। वो अपनी बात कहता है और उसको उसके बारे में चुप रहता है, उसे गौण करता है, उसके बारे में चुप्पी का होना इसका नाम ही गौण है। फिर आप हम किसी न किसी तरीके से बिल्कुल वो तो बेकार है, वो तो गौण करने लायक है, तो मुख हो गया ना, क्योंकि उसके बारे में चुप तो रहे नहीं। हम उसको गौण करने का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि बस उसे छोड़ो, हमें जैसे वो जगत में हमारे है ही नहीं, उसके अस्तित्व से इंकार नहीं, जैसे कि वो है ही नहीं, ऐसा कहके अपनी दृष्टि को वहां से हटाते हैं, उससे उसके अस्तित्व से इंकार नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इंकार, ऐसी चैतन्य परिणति उछल रही है, बराबर प्रति समय पर्यायों में प्रकट हो रही है, और साहब उससे इंकार कर देता जी है ही नहीं। क्यों? क्यों उछलती परिणति तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन तू ही है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी तू है, और निर्मल उछलती परिणति भी तू है, और विकारी परिणति भी उछल रही हो तो भी वो तू ही है। क्योंकि समुद्र किसे कहते हैं बोलो? समुद्र बहुत बड़े जल का एक भंडार है जो मीलों गहरा है, पानी भरा है। अब ऊपर सूर्य की किरणों की भयंकर गर्मी से तपकर वो पानी एकदम गर्म हो गया है, और चारों तरफ की धूल मिट्टी और यहां वहां की गंदगी बह बह करके आई ना, पत्ते मत्ते पेड़ों के चारों तरफ से, तो ऊपर वो पत्ते गंदा, ऊपर वो गंदा है, एकदम गर्म है, समझे ना। अब वो लेकिन वो सब 6 इंच के उसमें ही है, बहुत से बहुत 1 फुट समझ लो, ऊपर जो 1 फुट पानी है, और वो चंचल है क्योंकि हवा की लहरों से पड़ पड़ के, और वो एकदम चंचल है। तो ये 3 चीजें उसमें हैं, और अब उसके अंदर जो मीलों समुद्र है वो एकदम ठंडा है उसका पानी के, सूरज की गर्मी वहां तक नहीं पहुंची, ऊपर ऊपर की सतह ने वो गर्मी ले ली है और ऊपर का मैल भी वहां नहीं पहुंचा, वो भी ऊपर ऊपर की सतह में रह गया है और हवा का झोंका उसको नहीं लगता है, इसलिए उसमें लहरें भी नहीं उठती हैं। तो इस तरह से वो अंदर का जो दल है जो मीलों गहरा है वो एकदम शांत ठंडा है ना, शांत ठंडा और निर्मल है। ऊपर का समुद्र है वो मैला गंदा गरम और अशांत है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि सारे जगत को समुद्र के नाम पर वो ऊपर ऊपर का हिस्सा ही देखता है क्योंकि वो ऊपर है। अब हमारी दृष्टि भेदक तो है नहीं, तो हम ऊपर वो समुद्र माने एकदम चंचल, समुद्र माने एकदम गर्म, मैला पानी का नाम समुद्र है, अपन ऐसा समझते हैं जबकि ऐसा नहीं है वो। तो अब क्या होता है कि दो चीजें हैं, समुद्र तो वास्तव में दोनों को मिलकर है। मैं विकारी पर्याय को भी शामिल करके बात कर रहा हूं, यदि हमको निर्मल अकेली निर्मल पर्याय लेनी होगी तो वो हम अकेला वो अंदर का शांत जो है ना उसमें भी त्रिकालीपना भी है और प्रणमन भी है, तो उसमें भी हम ऐसा उदाहरण पकड़ सकते हैं। लेकिन यहां तो ये समझाना है कि दोनों को मिलकर समुद्र है। जो एक आदमी ने तो उस ऊपर की पर्यायों की को ही देखकर अंदर के अनंत दल की उपेक्षा की तो ये वो एक प्रकार का अज्ञानी हो गया। अब दूसरे व्यक्ति ने अंदर के दल पर इतना मोहित हो गया कि वो बाहर की जो वो एक एक फुट की तरंगें हैं वो उसको दरिया ही मानने को तैयार नहीं। अरे भाई दरिया तो असली ये है, असली होगा लेकिन वो दरिया ही नहीं है, ऐसा क्यों कहता है? पर बात इतनी सी है कि सियादवादी ऊपर के उसको भी स्वीकार करते हैं, अंदर के निर्मल पानी को भी स्वीकार करते हैं, पर ये बात अलग बात है कि उनकी उपादेय बुद्धि उनमें अपनापन वो अंदर का जो पानी है उतना उसमें है, ये बाहर के मेले मेले गंदे पानी में नहीं है अपनापन, इतनी सी बात है। लेकिन उनके अस्तित्व तो स्वीकार है ना। देखो अज्ञ जन हो नष्ट क्या चिद परिणति निर्मल उछलती से सदा इनकार कर, अज्ञ जन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञजन। स्यादवादी जो विज्ञजन विद्वान लोग हैं वे अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें। वे अनित्यता में भी व्याप्त हैं, अनित्यता में व्याप्त जो नित्यता है उसका अनुभव करते हैं। ये भंग है। अब पढ़ो इस छंद को जरा अच्छी तरीके से।
उत्पाद वै के रूप में बहते हुए परिणाम लक्षण भंग के पण संग निज का नाश करते अज्ञजन चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन है बोध जो टंकोत कीर्ण विशुद्ध उसकी आस से चिद परिणति निर्मल उछलती से सतत इनकार कर, अज्ञजन हो नष्ट किंतु स्यादवादी विज्ञजन अनित्यता में व्याप्त होकर नित्य का अनुभव करें।
एकदम बहता हुआ छंद है। बहता हुआ माने कहीं आपको अनुवाय करने की जरूरत नहीं है, इसे गद्य सरीखा भी पढ़ सकते हैं। और पद्य में तो आपने पढ़ाई है, लेकिन आप इसे गद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं क्या उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पण संग निज का नाश करते अज्ञजन है गद्य के रूप में भी पढ़ लो पद्य के रूप में भी पढ़ सकते हैं मैंने उसका भाव भी स्पष्ट होता चला जाता है अत्यंत सरलता से संस्कृत में आप पढ़ो तो आपकी जबकि आपने भी शास्त्री कर लिया है और 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके और संस्कृत के मीडियम से पढ़ाई करी है फिर भी इसे हिंदी अर्थ देखे बिना और हिंदी का पद्य पढ़े बिना इस संस्कृत का अर्थ अपन समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं अरे इनको पढ़ लिया अब भी संस्कृत के छंद को पढ़ें तो वो पूरा तरह हमारी समझ में आता जाए ऐसी क्षमता हम में नहीं है यदि हमारी मातृभाषा संस्कृत होती और हमारा उस पर ऐसा ही अधिकार होता तो निश्चित रूप से उसको पढ़ते हुए भी उसका कली कली हमें खिलती जाती संस्कृत की भाषा में तो और अधिक माधुरी है और अधिक ऐसा है कि जिसमें आनंद आता है लेकिन हिंदी में भी भाषा से क्या है सम्य दर्शन का संबंध धर्म का संबंध कोई भाषा से थोड़ी है भगवान की दिव्यधुनि भी 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में खिली थी जो वो संस्कृत वो क्या संस्कृत जो है वो गीर्वाण वाणी फलानी वाणी ऐसे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है संस्कृत ही थोड़ी वे तो प्राकृत कितनी भाषाओं में खिलती थी वो तो जब जिस भाषा में हमारे शास्त्र हमारे आचार्य भगवंतों के लिखे हुए प्राकृत संस्कृत में हैं इसलिए वो जरा महिमावंत हो जाते हैं और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी समझ में नहीं आता है वो ज्यादा महिमावंत लगता है ना देखो अब अर्थ तो अपन इसका मैं पढ़ूंगा नहीं मैंने बता दिया तब नीचे उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है कि आत्मवस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है मिल गया होगा उसमें भी होगा नहीं है क्या मैं इस मूल ग्रंथ से पढ़ रहा हूं लेकिन ये होगा तो उसमें जरूर मूल ग्रंथ हो जिसके पास वो खोल लो उक्त संपूर्ण कथन का मर्म यह है मिल गया हाँ कि आत्मवस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है वह नित्यानित्य है देखो अकेला नित्य कहा तो भी लगाया अकेला अनित्य कहा तो भी लगाया प्रमाण में भी लगती है ना और नित्यानित्य कहा तो फिर ना भी लगाया ना ही लगाया क्योंकि अब दो ही बातें मूल रूप में ही कह दी तो फिर भी लगाने भी तो इसलिए लगाई जाती है या चा चा माने और तो और माने क्या है ये आता है ना कई सब तत्वाशुद्ध के सूत्रों में है लब्धि प्रत्यम चय तो किस्सा का मतलब क्या है कि वो अवधि ज्ञान जो भव के आधार पर कहा था वह लब्धि निमित्तक भी होता है तो साकार भी हो गया माने तो पहली कोई बात चाहिए कि जिसमें ये भी लगे पहले हम कुछ कह आए हैं और उसके बाद ऐसा भी है और ऐसा भी है हैं? जाता है ना देखो अविग्रह जीवस्य विग्रह बती चय काय को लगा दिया तो कहते हैं कि जीवों की गति अवग्रह माने बूढ़ा से रहित होती है तो और विग्रह बती चय वो विग्रह वाली भी होती है माने मूढ़ा से रहत माने अवग्रह होती है और मूढ़े वाले भी होती है दो ही कहनी थी तो पहले अकेली अविग्रह क्यों कह दी अविग्रह जीवस्य जीव की गति अवग्रह होती है जीव की गति अविग्रह और विग्रह वाली होती है ऐसा क्लियर कह देते लेकिन उनकी एक स्टाइल है क्या कि जिससे कम से कम अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और विग्रह बती चय प्राक चतुर्भ्या क्यों 4 समय के पहले पहले और फिर हम कहते हैं कि संसारी जीवों की गति विग्रह और अवग्रह दोनों होती हैं और मुक्त जाने वाले जीवों की गति अकेली अवग्रह होती है ऐसा अर्थ बताने के लिए भी ऊंचा शब्द का प्रयोग किया है तो ऐसे ही देखो कहां पढ़ रहे थे वक्त, ऊपर ऊपर से तो मात्र पर्यायों को देखने वाले जैनी, जो हम बता रहे अज्ञानी पशु जिसको कह रहे, ये कोई अजैनियों को नहीं कह रहे। जरा एक बात समझना, यदि कोई न्यायिक होता, न्यायिक माने न्याय, न्याय का विशेषज्ञ, न्याय का जानने वाला, हमारे आचार्यों ने कभी कभी न्यायिकों की और वैयाकरणों की मजाक भी बहुत उड़ाई है, कि ये बिल्कुल व्यवहार शून्य होते हैं, अपने पढ़ाई पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उसमें ही मस्त रहते हैं। तो वो उसमें उसका उदाहरण देते हैं एक न्यायिक का, वैयाकरण का तो ये देते हैं कि वो एक व्याकरणाचारी था, तो वो बाजार में गया तो महिला एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि दध्या ले लो, दध्या दही ले लो, मैंने दही ले लो, तो नहीं नहीं दधी शब्द में ई की मात्रा नहीं लगती है, ये मूलता ऐसा है इसमें फलाना प्रत्यय लगता है, तो ऐसा नहीं बोल सकती है, तो गलत बोलती है, जा भड़गे आगे जा, उसको भी दही नहीं मिला। एक दिन नहीं आए मैंने न्याय के विशेषज्ञ गए, अपने को न्याय में ही मस्त रहते थे, तो उन्होंने घी खरीदा, तो कटोरे में घी लिया, तो एकदम उनका दिमाग चला, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा, बड़ी सतभ्य रहता थे, घी के आधार पर कटोरा है, कटोरे के आधार पर घी है, इसकी परीक्षा करना चाहिए। अपन बोलते हैं पर्याय के आधार से द्रव्य है कि द्रव्य के आधार से पर्याय है, आधार आधे संबंध बताते हैं ना अपने कई जगह, तो सम्मत अधिकार वगैरह में कि ये आधे है वो आधार है, हैं? तो इसका हमको आधार आधे संबंध निकालना चाहिए, इस बात की परीक्षा करना चाहिए। तो क्या आगे बर्तन ओंधा करके देखो, यदि घी के आधार पर बर्तन होगा तो पता चल जाएगा, तो उसने ओंधा कर दिया तो सारा नीचे गिर गया, ऐसी वो मजाक उड़ाई गई है। लेकिन भाई साहब ऐसा ही है, जो वो गहराई में जाके देखें तो ये तर्क काफी मजबूत है, कि अपन तो यही समझ रहे मूर्ख लोग क्या, कि बर्तन के आधार पर घी है, समझ रहे ना, लेकिन वो कहते कि नहीं घी के आधार पर बर्तन है, यानी हम जो घी का डब्बा हमने खरीदा है, हमने घी खरीदा है, डब्बा नहीं खरीदा है, हमें बोलते हैं घी लाए हम, 16 किलो घी लाए, घी का डब्बा लाए नहीं बोलते, तो मतलब है कि मूल वस्तु घी है और डब्बा तो उसके आधार पर है। तो गहराई में जाके हमने देखा ना कि ऐसा भी है, किसी अपेक्षा घी के आधार पर बर्तन है और किसी अपेक्षा बर्तन के आधार पर घी है, माने हम ऊपर से देखने पर वो मूर्खता लगती है, लेकिन नहीं वो वस्तु के स्वरूप की विचार करते हैं तो वो मूर्खता नहीं है। ऐसे वो वैज्ञानिक की मजाक उड़ाए जाते हैं ना, कि उसने अपने घर में दो बिल्लियां पाल रखी थी, और जब उसने अपने घर नया बनाया तो किवाड़ में कि बिल्लियों को आने जाने की सुविधा रहनी चाहिए, हम बाहर जाएं ताला लगा जाएं तो बिल्लियां घर के बाहर निकल जाएं और बाहर से अंदर चली जाएं, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो उससे कहा भाई इसका छेद बना देना, इससे बिल्लियां निकल जाएं। तो दो बिल्लियां थी, एक छोटी एक बड़ी, तो उसने एक बड़ा छेद बना दिया, तो उनने कहा कि ठीक है इससे बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, छोटी बिल्ली कहां से निकलेगी, कि साहब इसी में से छोटी निकल जाएगी। तो उनकी समझ में नहीं आया कि नहीं मूर्ख तू एक इसका अलग छेद बना, छोटा छेद बना इसके निकलने के लिए। तो सब ऐसा कह के उन वैज्ञानिकों की मजाक उड़ाते हैं, ख्याल नहीं ना, लेकिन वो बिल्कुल सही था उसका तर्क। उसने लिखा है टाइम इज फैक्टर, उसने कहा कि अंदर में बिल्लियां हैं और अंदर में गैस खुल गई और घर में पूरी गैस भर गई, तो वो गैस के प्रभाव से बिल्लियां कभी भी बेहोश हो सकती हैं, फिर मर सकती हैं, तो वे अपनी जान बचा के भागेंगी, तो जब वो बड़ी बिल्ली उस छेद में से जाएगी اس وقت چھوٹی بلی نہیں جا پائے گی تب تک وہ بے ہوش ہو جائے گی تو وہ مر جائے گی. اس لیے یہ ایمرجنسی کے لیے ہے نا, ویسے تو دروازہ کھلا ہی ہے. تو ایمرجنسی میں ایک ایک سمے کا کی قیمت ہے, سمجھے نا. وہ یہ کہہ رہا ویگیانک, ویگیانک کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ نے تو سنیما میں, ریلوے میں, ان سب جگہ ہوتے ہیں نا ایمرجنسی ایگزٹ, یہ کباڑ ہمیشہ بند رہتے ہیں اور ایمرجنسی میں ہی کھلتے ہیں. تو وہ اتنے ہوتے ہیں کہ جتنے میں وہ زہریلی گیس پھیلے اس کے پہلے سب آدمی اس سے باہر نکل جائیں, اتنے ہونا چاہیے وہ دروازے, تب تو وہ ایمرجنسی ڈور ہیں, انتھا وہ ایمرجنسی ڈور نہیں ہے. آپ مطلب سمجھیں کیا کہہ رہا ہوں میں. یہ ہال ہے, اس کے چار دروازے ہیں. یہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی کھتا کر بھرا ہو تو مان لو اس میں 2000 آدمی ہیں. اب اس میں ایک گیس پھیل جائے, آگ لگ جائے تو سب بھگیں گے, تو ان دروازوں میں سے دھیرے دھیرے نکلیں گے, تو جب تک جو بہت سے لوگ اندر لے جائیں گے بھی جل جائیں گے. ایسا نیم ہے اگنی کا, آپ لوگ اگنی پہ سے ہاتھ نکال دیتے ہیں جلتا نہیں ہے, کہ اتنا سمے لگے تو اس کے بعد جلتا ہے, اتنے سمے تک نہیں جلتا وہ, مطلب تو وہ اس سمے کے پہلے پار ہو جاتے ہیں, ایسا ہاتھ نکال دیتے ہیں تو نہیں جلتے ہیں. وہاں ٹھہر جائے ہاتھ تو جل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایمرجنسی ڈور اتنے ہونا چاہیے کیا کہ وہ سب ایک ساتھ آسانی سے کھل سکیں, اور ایک لمٹ سمے میں کہ آگ سے جتنے سمے میں آدمی جھلستا نہیں ہے, جلتا نہیں ہے, اتنے سمے میں سب باہر نکل جائیں تو بھی ایمرجنسی ڈور ہیں, انتھا بھی ایمرجنسی ڈور نہیں ہے. اس حساب سے وہ سب بنائے جاتے ہیں. پدھتی جو ہے اب اپنے یہاں کہاں ہے, کتنے دروازے ہیں بھیا, اس میں سے کتنے ہیں بولو؟ چار ہیں نا, اور اب چار ہی سمجھ لو ایمرجنسی ڈور ہیں. اب ہیں ایسے ایک کھڑ کے بھاگنا ہو سب کو تو یہ دروازہ کھلے گا. اس کے پیچھے تم نے ہزاروں کتابیں لگ رکھی ہیں, اسے لاک کر رکھا, چابی بھگوان جانے ملے تین دن تک چابی نہیں ملے, اور چابی کھل جائے تو سامنے مال بھرا پڑا ہے نہیں نکل سکتے. بولے کیا کام کا یہ دروازہ, کیا کام کا, نام کا دروازہ ہے نا. یہ دروازہ جو کھل سکے اور وہاں سے لوگ نکل سکیں اس کا نام دروازہ ہے. آپ جانتے ہیں نئی نئی بلڈنگیں بنتی ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں اس میں آگ لگ جائے تو جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی ہیں وہ آسانی سے نکل سکیں, ایسی جگہ کوئی پارکنگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گاڑی رک جائے, تو اس کا پورا راستہ بنایا جاتا ہے, نشان لگائے جاتے ہیں, اور وہاں کوئی آدمی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتا ہے, کوئی کسی بھی طرح کا اوروھ کھڑا نہیں کر سکتا ہے. وہ گاڑی آئے گی اور دوڑتی ہوئی وہاں جا کر کے, اور جہاں بھی آگ لگی ہوگی وہاں پہنچ جائے بنا بادھا کے, اور اس کو باہر سے وہ بنانی پڑتی ہیں کہ تھرا در درا در باہر سے ہی چڑھ جائیں بلڈنگ پہ. دسواں مالا ہے تو دسویں مالے پہ پہنچ کر کے وہ اسے بجا سکیں, جو بھی انہیں کرنا ہے کر سکیں. ایسی ساری ویوستھا کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب بہت بدھیمانی پورا آپ نے کہا کہ بیوقوف نے باہر سے ایسی سیڑھیاں بنا دیں, لینا دینا کون جائے گا اس میں, یہاں سے دروازہ بنا دیں. معلوم آپ کو ہمارے بمبئی میں جو گھر ہے اس بلڈنگ میں 16 منزل کی ہے نا, 16 منزل کی بلڈنگ ہے, تو اس میں 8 منزل پر اور 15 منزل پر پورا 2-3 فلیٹ خالی رکھنا پڑتے ہیں. کائے کے لیے کہ آگ لگ جائے تو ایمرجنسی والے پھٹافٹ وہاں پہنچ جائیں, اور سب لوگ اپنے گھروں میں تو جالیاں لگوا لیتے ہیں نا, تو جالیاں لگوا لیں گے تو باہر نکل نہیں سکتے, ان میں کبھی جالیاں نہیں لگتی ہیں, تو ان میں سے پھٹافٹ ایمرجنسی والے ان لوگوں کو نکال دیتے باہر. سب کو ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم دوڑ کے اس فلیٹ میں اکٹھے ہو جاؤ, اس میں کبھی تالا نہیں لگتا, وہ کبھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, اس میں کھڑکیوں میں سریے نہیں لگتے, کیونکہ ان میں سے ان کو وہ نکالیں گے. اب میں کہا کہ بیوقوف ہونا, یہ ایک ایک فلیٹ چار چار کروڑ کا اور انہیں چار فلیٹ ایسے ہی چھوڑ دے. اب ان کو بیوقوف لگتے ہیں نا سارے جگت کو, جو لوگ جو کام بیوقوفی کے لگتے ہیں, کبھی کبھی وہ کام بہت کام کے کام ہوتے ہیں, بیوقوفی کے نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے ہی وستو کے سوروپ کے معاملے میں بھی ہے, اس تتو گیان کے معاملے میں بھی ہے. گیانی جن ایسے پاگل جیسے لگتے ہیں, اب وہ گھرتا دھارم برتنم برتنا دھارم گھرتم, میں نے بتایا نا کہ وہ سچ مچ ایسا ہے کہ اس میں برتن کے کوئی قیمت نہیں ہے, اس میں صرف گھی کی قیمت ہے. جتنے کلو گھی آج ہے اس کا ہم نے بل چکایا ہے, وہ ہمارے کام آئے گا. اس لیے گھی مول وستو ہے اور برتن مول وستو نہیں ہے. تو گھی کے آدھار سے برتن ہے, برتن کے آدھار سے گھی نہیں ہے. اب اس نے ایسا پرشن کیا, گھرتا دھارم برتنم برتنا دھارم گھرتمبا, وہ برابر وہ گھی گر گیا اور اپن نے مذاق اڑا دی اس کی, ہے نا. مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے, بس تو اس میں کچھ تتھ ہے. ایسا ہی اس میں ہوتا ہے. دیکھو اوپر کا سمپورن کتھن کا مرم یہ ہے کہ آتم وستو نت بھی ہے انت بھی ہے, وہ نتیہ نت ہے. اوپر اوپر سے ماتر پریاؤں کو دیکھنے والے جینی, مانے یہ غلطی جینیوں کی ہے, اجینیوں کو نہیں بتا رہے کہ ہم برابر سرکانت کانت بادی بودھوں کو پکڑ لیں. تو نیائے والے ہیں نا, جو جن لوگ لڑائی لڑائی کرنا ہے, جنہیں کھنڈن منڈن کرنا ہے, تو کہیں گے کہ یہ چھنکوادی بودھ ہوتے ہیں نا ان کی بات ہے, یہ نتیہوادی سنگھ ہوتے ہیں نا ان کی بات ہے. ادھیاتم والے کیا کہتے ہیں, یہ ایسے جن کی مانتا بودھوں جیسی ہے ایسے جینی, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. کیسے بودھوں جیسی مانتا ہے جن کی, کہتے ہیں اپنے کو جینی, جین کل میں پیدا ہوئے ہیں, جین کریا کانڈ پالتے ہیں سب, اور میں جینی ہوں اس بات کے لیے لڑ مریں. انہیں بودھ کہہ دے تو لڑ مریں, اور اندر کی مانتا پریائے میں ایکتو بدھی ہے اور درب کو بھول گئے تو وہ ان کو کہتے پرچھن بدھ ہیں, وہ جینی نہیں ہیں, چھپے ہوئے بودھ ہیں, جین کے نام پر بودھ ہیں. دیکھو پریاؤں کو دیکھنے والے جین, ماتر پریاؤں کو دیکھنے والے جینی انتئی کانت وادی بودھوں کے سمان آتما کو سروتھا انت مان لیتے ہیں. اسی پرکار پریاؤں کی انتتا کو انشٹ بدھی سے دیکھنے والے جینی نتئی کانت وادی سانکھیوں کے سمان آتما کو سروتھا نت مان لیتے ہیں. سیاد وادی کہتے ہیں کہ دربیارتھک نئے سے آتما نت ہے, پریارتھک نئے سے آتما انت ہے. اس پرکار آتما ایک ہی سمے میں نت بھی ہے انت بھی ہے. آتما میں نتیتو انتیتو دونوں ہی دھرم ایک ساتھ ودیمان ہیں, اتاو ہے نتیا نت ہے. ایسا ماننے والے سیاد وادی وستو کے ستیہ سوروپ کو پراپت کر انت سکھی ہوتے ہیں. اکت دونوں ایکانت وادی وستو سوروپ سے اپرچت رہنے کے کارن سچے سکھ سے ونچت رہتے ہیں. اس طرح یہ گاتھاؤں پوری ہو گئی. اب یہ جو اپن نیچے پڑھیں گے ایک پیج, یہ پورا ان چودہ بھنگ کے سندرم میں سماپن سمبندھی ٹپنی ہے. ان چھندوں کی نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا مان لیتے ہیں کہ یہ بس وہی چھند, وہ بولیں گے اس چھند کی ٹیکا میں لکھا ہے, جیسے وہ 320 گاتا کی ٹیکا کے بولتے رہتے ہیں نا اس میں. ایسا سیاد واد سمبندھی اکت 14 بھنگوں کے سندرم میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے, اکت سمپورن کتھن کا مول آدھار ایک ماتر یہی ہے کہ گیان کا سوبھاو سپر پرکاشک ہے. یہ ایک چابی بتا رہے کیا سمجھایا ہے گیان کا سوبھاو سپر. اب جو بات تو نت نت کی تھی, بات تو بھاوائی کانت اہاوائی کانت کی تھی, سوچھیتر پر چھیتر کی تھی, سوکال پر کال کی تھی, لیکن ان سب میں بیچ میں چیز کیا پڑی تھی جس بات کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہی گئیں. تو کہتے ہیں کہ گیان کا سوبھاو سپر پرکاشک ہے, اس کارن اس میں سوا اور پر सभी प्रकार के अनंत गेय पर्यायगत योग्यता के अनुसार निरंतर जानने में आते रहते हैं। ये पर्यायगत योग्यता के अनुसार का क्या अर्थ है कि जिस पर्याय में जिस गेय को जानने की योग्यता है, योग्यता मैंने वो जानने का अनादिकाल से नक्की है ना, वही उसकी योग्यता है कि जे इसको जानेगा। तात्पर्य यह है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों के जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है। जो अपने कहते ध्यान ध्यान वहां से हटा लो, यहां लगा दो, कहा क्या कह रहे तुम, कौन तुम ऐसी ऐसी करेगा, समीर पर्वत को फटाफट वहां से हटा करके जम्बूद्वीप में से वहां से हटाकर ना विदेश क्षेत्र में से भरत क्षेत्र में ले आओ, बड़ा अच्छा लगेगा यहां। अरे भाई उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक ज्ञान की पर्याय का गेय नक्की है, ये जानो ये मत जानो, तो पर वैसे उपयोग हटाओ सौ पे लगाओ, इन बातों में क्या दम है। अब बोलो असली जैन धर्म क्या है, और सारे जगत में जाके पूछ लो ये करो ये करो ये करो ये करो, जगत में ये कर दो वे कर दो, और फिर अपने में ये कर दो, ध्यान लगने में जहां जो कर दो कर दो कर दो करना। अरे जैन धर्म अकर्तावादी है, और इसमें कर्ता करने के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। ये विद्वान सेठ सब साधु संत सब है ना, क्या कह रहे आप कहां पढ़ रहे थे। तात्पर्य है कि ज्ञान पर्याय में परगेयों को जानने को किसी भी स्थिति में रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान पर्याय का सहज स्वाभाविक परिणमन है। और ज्ञान उसमें कुछ करना नहीं, उसे सहज परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन है। सहज कहने का मतलब तो बिना प्रयत्न के, स्वाभाविक माने कोई गलती नहीं हो गई, ऐसे ही स्वरूप है उस वस्तु का। यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त गेयों के जानने में ही है। तो उसको गेय को नहीं जाना तो क्या जाना। अपने ऐसा भजन तो सुना है, जाना नहीं और आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि दुनिया को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या देखा, बोलते कि नहीं बोलते। मुझे तो जब मैं पहले कहते थे कि पंडित जी से मंडी साहब चलो आज बहुत अच्छा एक वो आई है फिल्म, फिर वो आज चलो देख के आएंगे, मैंने कहा नहीं आज तो वही मेरे को एक कार्यक्रम है पास उसमें जाना है। नहीं 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 तो फिर कल वो निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी वो, आज चलो बस लास्ट डे है आज। तो मैंने निकल के कहां जाएगी है? निकल के कहां जाएगी, जहां जाएगी वहां देख लेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, अब तो बस खत्म वो, अब वो कहीं नहीं चलेगी। अरे भाई जिस दिन हमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो सारी फिल्में एक साथ दिख जाए। लेकिन कितना दुख की बात है कि जब सब एक साथ दिख जाएंगी तब एक को भी देखने का रस नहीं है, क्यों? और जब नहीं दिखती है तो उन्हें देखने का रस है। तो यद्यपि परगेयों का ज्ञान में जानने में आना कोई अपराध नहीं है, विभाव नहीं है, तथापि कुछ एकांतवादी अज्ञानी तो ऐसा मान लेते हैं कि ज्ञान की सार्थकता उक्त गेयों के जानने में ही है, ज्ञान का अस्तित्व ही उनके जानने में है, मानो उनको जाने बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार वे परगेयों से अपना अस्तित्व मानकर एक प्रकार से स्वयं के स्वाधीन अस्तित्व से ही इंकार कर देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र निज अस्तित्व के अपलापी एकांतवादी हैं, अपने अपना अपलाप कर दिया उनने। ऐसे लोग मात्र अन्य मतवादी ही नहीं, अपने को आध्यात्मिक मानने वाले जैनियों में भी ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों की कमी है जो ऐसा मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, शास्त्री हूं, न्यायतीर्थ हूं, यदि मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता तो एक प्रकार से कुछ भी नहीं था। बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपना अस्तित्व मानने वाले लोग कहीं भी मिल जाएंगे। اگر اپنے نبی میں ڈاکٹر نہیں بنتا تو بس کچھ نہیں, تچھ آدمی نہ چیز بن کے رہ جاتا, نہ چیز, کوئی میں چیز ہی نہیں ہوں. کیوں؟ اور بن گیا تو بس سمجھ لو کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. آچاری کہتے ہیں کہ بھائی تیرا اثر تو تیرے سے ہے, پر کو جاننے سے نہیں ہے. مان پر کو جانتا ہے, یہ بات سچی ہے, لیکن تیرا استتو جو ہے پر کو جاننے کے کارن نہیں ہے, یہ بات ہے. اس کے ورودھ کچھ اجانی ایسے ہیں جو ایسا مانتے ہیں کہ جو پر پدارتھ میرے جاننے میں آتے ہیں بانوں بے میرے ہی ہیں. اس پرکار پرگیوں کو نج روپ ماننے والے لوگ گیان میں پرگیوں کے اناستتو سے انکار کرنے والے لوگ ہیں. گیان میں تو پرگے کا اناستتو ہے, استی نہیں ہے, جبکہ بس یہ ہے کہ گیان میں پرگے جاننے میں تو آتے ہیں, پرنتو پرگیوں کے جاننے میں پرگیوں کا رنچ ماتر بھی یوگدان نہیں ہے. مانے پرگیوں کے کان گیان نہیں ہوا, رنچ ماتر بھی گیا دھینتا نہیں ہے. گیان کا استتو سروپ سے ہی ہے, اور پرگے گیان میں جاننے میں آنے سے بھی گیان روپ نہیں ہو جاتے, گیان میں تو ان کی ناستی ہی رہتی ہے. اس لیے نہ تو پرگیوں کو جاننے کا نشید کرنے کی آوشکتا ہے, اور نہ انہیں جاننے میں آنے کے کارن انہیں نج روپ ماننے کی ہی آوشکتا ہے. صحیح سروپ سے, یہی سروپ سے ہستی اور پر روپ سے ناستی کا واستوک ارتھ ہے. یہاں اسی مول دھارنا کے آدھار پر ہی 14 پرکار کے ایکانتوں کا نشید کر سیادواد کی استھاپنا کی گئی ہے. ان 14 بھنگ تتسمبندی کلشوں کے اپرانت اس پرکرن کا سماپن کرتے ہوئے آچاریہ امرتند 2 کلش لکھتے ہیں, جن کی چرچا اپن کل کریں گے. دیکھو یہ 14 کلشوں کا سارانش ہے. مانے ہر ایک میں کیا سمجھایا ہے کہ آتما سپر پرکاشک ہے. کوئی آدمی تو ایسا ہے کہ پر کا جاننا ہی نہیں مانتے, اور کچھ لوگ پر کے جاننے میں ہی اپنی جیون کی سارتھکتا مانتے ہیں. جو پر کو جیون میں جاننے میں ہی سارتھکتا مانتے ہیں وہ دوسرے طرح کے ایکانتوادی ہیں, اور جو اس کے جانتے ہی نہیں ہیں وہ کیا اس سے اپنا استتو مانتے ہیں ان کے جاننے کے کارن, وہ پہلے پرکار کے ایکانتوادی ہیں. وستو سروپ ان دونوں کے مدھے سادباد روپ ہے کہ آتما سور پر کو جاننے والا بھی ہے, پر کو جاننے والا ہے, لیکن پر کے جاننے کے کارن اس کا استتو نہیں ہے. سمجھے نا, یہ وستو کا سروپ ہے. صرف اتنی بات سمجھانے کے لیے پورا پرکرن ہے, یہ نشکرش نکال کے رکھا ہے. یہ 14 کلشوں کا ایک سوتر ہے, ایک وہ ہے جس کو پکڑ کر کے تم آگے چل سکتے ہو. خیال میں تھوڑا تھوڑا بدلتا جائے گا, کہیں وہ چھیتر کی بات آ جائے گی, کہیں کال کی بات آ جائے گی, کہاں گن کی بات آ جائے گی, کہیں بھید کی بات آ جائے گی, کہیں تت کی آ جائے گی, اتت کی آ جائے گی, لیکن ان سب کا ادیش یہی ہے کہ پر میں جاننے میں آنے والے جو گے پدارتھ ہیں ان کو آتما جانتا تو ہے, کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انہیں جاننے سے روک سکے, اس لیے میں انہیں نہیں جانوں. ایسا پرتن بھی بالکل بیکار ہے, اور ان کے جاننے سے ہی میرا جیون سارتھک ہے. ایسا کوئی سوبھاگیشالی اپنے کو مانے تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے. میرا استتو ان کے جاننے کے کارن نہیں ہے. اس کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ میں انہیں جانتا نہیں ہوں, جانتا تو ہوں, لیکن میری استتو کے لیے ان کا جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے. تو پھر کیوں جانتے ہو گے؟ جب میرا جاننا سہج سوبھاو ہے, اس لیے اس کو ہم اس بھاشا میں بھی بولتے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں, وہ جاننے میں آتے ہیں. یہ نئی ادھیاتمک بھاشا ہے جو اپنے گرودیو کے مکھ سے نکلی, کہ ہم پدارتھوں کو جانتے نہیں ہیں, وہ پدارتھ ہمارے جاننے میں آتے ہیں. صرف اتنا سا بتانا ہے کہ اپنے کہتے ہیں دیکھو بھائی صاحب, تم یہ ہمارے یہاں آئے ضرور ہیں, اور ہم نے ان کا سواگت بھی کیا ہے, لیکن ہم نے انہیں بلایا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کیوں بلایا ان کو, کہ ہم نے نہیں بلایا. کون کہتا ہے؟ آئے نا, اور آپ نے سواگت کیا. دیکھو بھائی, کوئی مہمان آئے بنا بلائے بھی آئے تو بھارتی سنسکرتی ہے کہ اس کے گھر میں تو اس کا سواگت ہی ہوتا ہے. ہم نے اپنے بھارتی سنسکرتی کو نبھایا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے نا روزانہ؟ کیوں راجنی اپنی میٹنگ میں اپن نے مان لیجیے کہ نرمل کمار سیٹھی کو نمنترن نہیں دیا, پتر نہیں لکھا کہ آپ پدھارنا ہمارے شبر میں, اور یدی بھائی آ جائیں اس سفر میں شبر میں تو ہم وہاں سے نکال دیں گے, آئیے 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 بیٹھیے. میں نے نہیں نہیں اوپر نہیں اوپر بیٹھو بھائی, یہ سیٹھی جی ہیں ان کو مالا پہناؤ تلک لگاؤ. ارے آپ نے مالا پہنا رہے تلک لگا رہے سواگت کر رہے, کیوں بلایا آپ نے اسے؟ ہمیں نہیں بلایا تو پھر کیوں کیا یہ؟ جو مہمان ہے آ جائے اس کو ہم منع تھوڑی کرتے. اپنے پنج کلیانا کی سبھا چل رہی ہے, اب منی راج آ جائیں اپن نے ان کو بلایا نہیں ہے تو اپنا کیا کہہ دیں گے؟ نکل جاؤ, آئیں گے بلائیں گے اچاسن پہ بیٹھا لیں گے, یہ کہیں گے مدد بتاؤ آشیرواد دو سب کو, یہی ہوگا نا ویوہار کیا ہے. تو پر کو جاننا کی بات بھی نہیں ہے اور جاننے میں آنے سے بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بس وستو کی سروپ ہے. اس کو اسپشٹ کرنے کے لیے یہ 14 چھند اور گد اور پد دونوں میں یہ بات اسپشٹ کی. اب جو اگلا چھند ہے اس چھند میں یہ بتا رہے کہ ہم نے جو پرتیجا کی تھی وہ ہماری پرتیجا پوری ہو گئی, اس کی چرچا اپن کل کریں گے.